वेधवला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 10। ओ नमः सिद्धेश, ओ नमः सिद्धेश, ओ नमः सिद्धेश, ओ शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सवसाहुं वेदगं वेदगंत संसिद्धं सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्चं वेदगमहारमम। यह श्री भीषण आचार्य की जेधोला टीका है जो कषाय पाउल तथा चौमी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यति ऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 61 पर आ गए। 61 प्रकृति स्थान उदीर्णा की बात अपनी चल रही है और उसमें भी वो लगातार काल हमने देखा था, अब अंतर देख रहे हैं। एक जीव की अपेक्षा अंतर, यानी अलग अलग जो प्रकृतियों के स्थान है वो एक जीव की अपेक्षा उसमें कितना अंतर हो सकता है। तो देखो, एक प्रकृति स्थान कब होता है याद है? हाँ, संज्वलन चार में से कोई है। तो नवे गुण स्थान के दूसरे भाग से लेकर दसवें के एक आवली कम तक होता है एक प्रकृति का स्थान। अब उसमें अंतर कब पड़ेगा? एक से जीरो हो जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा तो एक का शुरू करेगा, तो ये उसका अंतर होगा। ये कितना होगा? कम से कम
दसवें की आवली प्लस
यानी अंतर्मूर्त।
हाँ, अंतर।
वो काल कितना होगा? तो अंतर्मूर्त। ऐसे दो प्रकृति का लेना, दो प्रकृति ने एक वेद एक कषाय, वो भी कब होता है? नौवे के पहले भाग में। तो वो पहले भाग से दूसरे भाग में आया तो एक प्रकृति वाला हो गया, तो दो का अंतर शुरू हो गया। वापस जब दो का शुरू हो जाएगा तो वो अंतर समाप्त हो जाएगा, तो उसका अंतर कितना है? वो भी अंतर है। ऑप्शन थे नहीं
जगन्य में पुरुष वेद,
पुरुष वेद के लिए। हाँ, पुरुष वेद के लिए जगन्य होगा क्योंकि उसका
उदय पीछे,
हाँ, उदय अधिक काल तक चलता रहेगा पुरुष वेद वाला। अब चार प्रकृति वाला लेना है तो चार प्रकृति वाला किसके होता है? तो अपूर्वकरण वाले के होता है या प्रमत्त अप्रमत्त के औक्षणिक वाले के भी चार प्रकृति वाला स्थान होता है। कैसे होता है? एक संज्वलन, एक वेद और एक युगल,
चार का
भाई नुकसान नहीं है। तो उसके ये चार का स्थान है और फिर भाई गुप्सा हो जावे उसके लिए और वापस वो चले आए इसमें तो उसके तो अंतर्मूल होगा या अपूर्वकरण वाला अनिवृत्तिकरण में जाके वापस अपूर्वकरण में आ जाए
तो भी
उपसंग छेनी वाला तो भी वो चार का स्थान होगा। ये उसका जघन्य अंतर कहता है। अब उसका उत्कृष्ट अंतर कैसे लेना है इनका, एक का, दो का और चार का? तो हमने देखा ना, जिसका जो स्वामी होगा उपसंग छेनी के उतरते समय एक का स्थान हुआ, एक के बाद दो का हुआ,
अंतर
फिर दो के बाद वो छेनी चढ़ के उतरा है, वो फिर क्रम से नीचे के गुणस्थानों में यथा हो गया, फिर मिथ्यात्व में चला गया और फिर उपार्ध पुद्गल परावर्तन काल के बाद फिर वो श्रेणी चढ़ा। सब श्रेणी चढ़ाओ क्योंकि हमें अंतर बढ़ाना है, तो उतना उसका उत्कृष्ट अंतर हो जाए। एक में भी ऐसा है, दो में भी ऐसा है, चार में भी, यानी उसको फिर संयमी बनाओ तो चार वाला स्थान हो जाएगा। तो ये तो हमने कल देखे थे, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त देखा था और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन, एक दो और चार वालों को देखा। अब हम आगे पढ़ेंगे 61 पृष्ठ पर नीचे का जो सूत्र है लास्ट 61 पे, पंचन्नम छन्नम सत्तन्नम पैडीनम पवेसगंतरम केवचिरम कालादो होई। पांच छह और सात प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कितना है, यह सूत्र सुगम है। जघन्य अंतर एक समय है। अब यह एक समय कैसे होता है उसको बताएंगे। सर्वप्रथम पांच प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कहते हैं, यथा क्षायिक सम्यक दृष्टि या उपशम सम्यक दृष्टि, जो संयत जीव, ये चार वाला भी हमने स्थान उसको देखा था, परंतु उसमें भय जुगुप्सा दोनों नहीं थी। अब ये कैसा लेना, वो चार प्लस एक भय या एक जुगुप्सा, कोई भी एक लेना। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक दृष्टि संयत जीव भय के साथ पांच प्रकृतियों की उदीर्णा करता हुआ स्थित है। तो भय का लगातार उदय अंतर्मूर्त हो रहा हो, उसमें एक समय भी बाकी है। तो कहते उसके भय की उदीर्णा का एक समय काल शेष रहा कि वह जुगुप्सा का प्रवेशक हो गया। देखो क्या भय का हो रहा था, भय का तो चल ही रहा है, तो भय का उदय होते हुए जुगुप्सा का भी शुरू हुआ, यानी वो भय का कंप्लीट होने के पहले पहले भय जुगुप्सा का उदय शुरू हुआ। यानी एक समय के लिए क्या होगा, भय का भी है और जुगुप्सा का भी। फिर भय का तो अंतर्मूर्त समाप्त हुआ तो उसका उदय भी समाप्त हुआ, और जुगुप्सा का अभी शुरू हुआ है, वो तो लगातार चलेगा। यानी पांच में से एक समय के लिए छह में आया और फिर पांच में चला। पहले भय के साथ पांच वाला था, एक समय के लिए दोनों के साथ हुआ, और फिर नेक्स्ट समय में जाके अकेला जुगुप्सा के साथ पांच वाला हो गया। तो उसका अंतर एक समय का घटित हुआ, पांच में से छह वाला हो गया, छह में से पांच वाला हो गया। देखो यथा क्षायिक समय दृष्टि या उपशम समय दृष्टि, जो संयत जीव भय के साथ पांच प्रकृतियों की उदीर्णा करता हुआ स्थित है, उसके भय की उदीर्णा का एक समय काल शेष रहा कि वह जुगुप्सा का प्रवेशक हो गया, जुगुप्सा की उदीर्णा करने लगा। वहां छह प्रकृतिक उदीर्णा स्थान के द्वारा एक समय तक उसका अंतर करके दूसरे समय में भय की उदय विच्छित्ति के द्वारा, उसका तो उदय अंतर्मूर्त वाला काल समाप्त हुआ इसलिए भी उसका उदय समाप्त हुआ, फिर से पांच प्रकृतियों का प्रवेशक हो गया। यानी पहले पांच का कर रहा था, एक समय के लिए भय जुगुप्सा दोनों का किया, तो भय का अंतर्मूर्त पूरा हुआ, भय निकल गया और जुगुप्सा चालू रहेगी, तो उसका एक समय के लिए छह का हुआ, फिर पांच का हो गया। इस प्रकार पांच प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर एक समय मात्र प्राप्त हो गया, अंतर की बात चल रही है। अथवा यही पांच प्रकृतियों का प्रवेशक संयत जीव भय की उदय विच्छित्ति द्वारा एक समय तक चार प्रकृतियों का प्रवेशक होकर, यानी भय की उदीर्णा चल रही थी, अब वो भय की भी उदय विच्छित्ति हो गई, अभी भय का भी उदय नहीं और जुगुप्सा का भी, तो चार का उदय हुआ, उस द्वारा उसका अंतर करके पुनः दूसरे समय में जुगुप्सा के प्रवेश द्वारा। यानी भय जुगुप्सा अकेले अपने अपने समय पर प्रवेश करेंगे, हो सकता है बीच में वो दोनों ही नहीं हो या दोनों एक साथ ओवरलैप हो, तो उसके कारण ये अलग अलग प्रकृतियां बनती हैं। तो फिर दूसरे समय में जुगुप्सा के प्रवेश द्वारा पांच प्रकृतियों का प्रवेशक हो गया, इस प्रकार पांच प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर एक समय प्राप्त हो गया है। ये बात चल नहीं। अब छह प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कहते हैं। छह प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले जिस वेदक समय दृष्टि संयत जीव ने, छह कौन है कि जो दोनों की उदीर्णा कर रहा है, छह प्रकृति ग्रह ग्रह हुआ है, प्र करना उसका, वो प्रकृति में ती भी बराबर नहीं आया वैसे। हम्म, उदीर ना करने वाले जिस वेदक समय दृष्टि संयत जीव ने, अब ये वेदक समय दृष्टि है, पहले वाला कौन सा लिया था? औक्षमिक और क्षायिक लिया था, और वो पांच का कर रहा था भय के साथ, फिर उस पर घटित किया। अब ये मूल में वेदक समय दृष्टि तो एक प्रकृति ऑलरेडी ज्यादा है, वैसी कंडीशन इसके लेना, तो ये छह प्रकृति वाला हुआ। छह प्रकृति कैसी है? एक सम्यक प्रकृति, एक संज्वलन, एक वेद, एक युगल और एक भय। तो भय का काल समाप्त होने को एक समय बाकी है, तब क्या होगा? जुगुप्सा का भी शुरू हो गया, तो छह में से सात हो जाएगा, और वापस भय का समाप्त होने पर फिर छह पर आ जाएगा। देखो, छह प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले जिस वेदक समय दृष्टि संयत जीव ने भय की विच्छित्ति कर एक समय के लिए उसका अंतर किया। अच्छा, यानी पांच का हो गया, पहले इसको ले लिया उन्होंने, उसके फिर से तदनंतर समय में जुगुप्सा के उदय से परिणत होने पर छह प्रकृतियों के प्रवेशक का एक समय जघन्य अंतर प्राप्त होता है। छह, पांच और छह, अथवा छह प्रकृतियों के प्रवेशक उसी जीव के भय का एक समय काल शेष है, उस जीव ने जुगुप्सा के प्रवेश द्वारा उसका अंतर किया, यानी वो सात प्रकृति हो गया, तथा तदनंतर समय में भय की उदय विच्छित्ति द्वारा वह पुनः छह प्रकृतियों का प्रवेशक हुआ। यानी एक समय के लिए भय जुगुप्सा दोनों साइमल्टेनियसली, तो फिर भय के तो उदय विच्छित्ति हुई, तो अकेले जुगुप्सा रह गए, वापस छह के स्थान पर आ गए। इस प्रकार भी इसका एक समय जघन्य अंतर प्राप्त करना चाहिए। उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव, अभी संयता संयत जीव लिया तो एक कषाय ऐसे ही ज्यादा है, यानी उसने वो उपशम समय दृष्टि या क्षायिक है, यानी समय प्रकृति को नहीं लेना परंतु दो कषाय को लेना, दो कषाय, एक वेद, एक युगल और एक भय लेना, ये छह वाला हो जाएगा। उसमें भी दो प्रकार से, छह में सात, छह से सात हुआ फिर वापस छह में आया, या छह से पांच हो गया और वापस छह में आ गया। इसी प्रकार दो प्रकार से इस पद का यह जघन्य अंतर कहना चाहिए।
अब समय दृष्टि को भी भय और जुगुप्सा को भी
सबके होता है, आठवें गुणस्थान तक तो सबके होगा ही, कभी भय का, कभी जुगुप्सा, कभी दोनों का, कभी दोनों का नहीं, दोनों का नहीं ये कंडीशन अंतर्मूर्त मात्र हो सकती है, अधिक नहीं। कोई भी जो चार ऑप्शन है ना, वो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में बदलते हैं। तो उपशम समय दृष्टि हुआ तो क्या हुआ? आठवें गुणस्थान के अंत तक भय का उदय
तो दर्शन होने की,
दर्शन होने का उपशम किया है वो तो पूर्वकरण के अंत तक है ना उसका उदय। अब सात प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कैसे? वेदक समय दृष्टि संहिता संयत जीव के, अब एक प्रकृति यहाँ पर बढ़ाई तो एक सम्यक प्रकृति, दो कषाय, एक वेद, एक युगल, ये छह हो गए, और एक भय को ले लो या जुगुप्सा को, तो सात प्रकृति हो जाएगी। तो वेदक समय दृष्टि संहिता संयत जीव के जिस प्रकार छह प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर कहा है, उसी प्रकार प्रकृत पद के जघन्य अंतर का अनुगम करना चाहिए, अथवा यानी इसके सात में से आठ भी हो सकता है, सात में से छह भी हो। जिसने दर्शन मोहनी कर्म का क्षय या उपशम किया है, ऐसे असंयत समय दृष्टि जीव के, अभी चौथे गुणस्थान वाला लिया उपशमी के अक्षाई, सात प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर भय और जुगुप्सा का आश्रय कर पूर्वोक्त विधि से ही जानना चाहिए। यानी वो जो चौथे गुणस्थान वाला है, तो दर्शन होने कुछ नहीं है, और फिर कषाय में तीन लेना, एक वेद, एक युगल, यहीं पर छह हो गए, और फिर एक भय या एक जुगुप्सा, सात हो जाते, तो सात में से बिना भय जुगुप्सा के भी कराना, नहीं बिना भय जुगुप्सा के उसके होगा ना, हाँ सात, चौथे में नौ सात छ पाँच, नहीं चौथे वाले के 9, 8, 7, 6 हो जाते हैं, कम से कम 6 होते हैं, कम से कम 6 होते हैं, तो इसको हम 7 वाला लिया है,
भय
और जुगुप्सा के साथ 7 वाला लिया, या तो 6 वाला होकर 7 होता है या 8 वाला होकर 7 होता है। फिर दर्शन मुनि के क्षपणा वाला है या औपशमिक है, यानी उसके उदय में
तीन कषाय
नीचे, हाँ यानी दर्शन मुनि नहीं लेना है, तीन कषाय ही लेना है ना, तीन कषाय से शुरू करते हैं। देखो तीन कषाय है, हाँ एक वेद एक युगल, 3, 1, 4, 2, 6 हो गए यहाँ पर, और फिर भय या जुगुप्सा लेंगे तो 7 हो जाएंगे, दोनों को लेंगे 8 हो जाएगा, और 0 को लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो हम यहाँ 7 वाला देख रहे हैं, तो 7 वाले को एक समय के लिए 6 वाला हो जाएगा, वापस 7 में आएगा, या 8 वाला होके 7 वाला हो जाएगा, उसी गुणस्थान की बात चल रही है। भय जुगुप्सा के उदय के बदलने से ये सारे भंग बता रहे, यहाँ तो मंत्र देख रहे। फिर पढ़ेंगे हम 63 पेज पर सेकंड लाइन, अथवा जिसने दर्शन मोहनी कर्म का क्षय या उपशम किया, ऐसे असंयत समय दृष्टि जीव के 7 प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर भय और जुगुप्सा का आश्रय कर पूर्वोक्त विधि से ही जानना चाहिए। अब ये तो जघन्य अंतर उन्होंने बता दिया। एक समय उपकस्य न उवड्ढ पोगल परियट्टम, उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। क्योंकि अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल के प्रथम समय में, प्रथम यहां भी ग्रह हुआ, प्रथम सम्यक्त्व के ग्रहण पूर्वक यानी प्रथमोक्षम सम्यक्त्व हुआ, इन तीनों का यथासंभव अपने विषय में उत्कृष्ट अंतर के अविरोध रूप से प्रारंभ करके, यानी जो हमने 5 का देखा, 6 का देखा और 7 का देखा, उसका अंतर हुआ, कोई चौथे वाला है, कोई पांचवे वाला है, कोई छठे सातवें वाला है, छठे सातवें वाले को हमने वहाँ 5 वाला लिया था, ये पांचवे वाले को 6 वाला लिया था, और ये चौथे वाले को 7 वाला लिया था, अपना अपना अंतर किया, और अंतर करके अनंतर मिथ्यात्व में जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिवर्तन करके, अभी ये 7 वाला जो हम देख रहे हैं दर्शन मोहन की सपना या उपशम करने वाला 7 वाला, वो मिथ्यात्व में गया, तो मिथ्यात्व में उसके कौन से स्थान हो गए? मिथ्यात्व में कौन से स्थान हो गए लंबे काल तक?
10, 9 और 8।
7 वाला तो स्पेशल है, अनंतानुबंधी की विचेंजना करके संयुक्त होने वाले के आवली काल तक है, वो तो लगातार टिकने वाला नहीं है स्थान, मिथ्या तो में गया है ना अभी, तो अधिक से अधिक कितने काल तक रह सकता है? तो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि एक बार समय तो प्राप्त करके गया है, तो 8, 9, 10, 9 और 8 ये तीन ही स्थानों में वो घुमा करेगा, यानी 7 का अंतर हुआ है, 6 का हुआ है या 5 का हुआ, तो अभी ये लंबे काल तक मिथ्या तो में रहेगा, तो उसको उत्कृष्ट अंतर कहेंगे।
साइक को छोड़ना पड़ेगा, साइक को छोड़ना पड़ेगा,
हाँ साइक तो नीचे आएगा नहीं, मिथ्या तो में जाने वाले तो अंतर करने वाले जो है, हाँ वेदक समय दृष्टि, इसलिए अविरोध पूर्वक लिखा, साइक वाले में तो विरोध उत्पन्न होगा, और अंतर करके अनंतर मिथ्यात्व में जाकर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिवर्तन करके संसार के स्तोक शेष रहने पर पुनः सम्यक्त्व की प्राप्ति के साथ उन स्थानों के प्राप्त होने पर उनका अंतर उपलब्ध होता है। हाँ। उसी की अपेक्षा अर्धपुद्गल परार्थम गति
नहीं, आपने वेदक सम्यक दृष्टि की बात की। मैं ये पूछना चाहता था कि प्रथम उपशम यानी उपशम सम्यक दृष्टि भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक रखड़े सकते हैं,
क्योंकि उपशम जिस प्रकृति को जहाँ लिए ना, एक एक प्रकृति के दो तीन तरह से उन्होंने बताया, वेदक वाले को भी होता है, उपशम वाले को भी होता है, परंतु उसके ऑप्शन भय गुप्ता के अलग अलग लिए थे। अभी क्षायिक वाला तो जाएगा नहीं नीचे, मिथ्या तो में तो जाने वाला ही नहीं है, तो जो उत्कृष्ट अंतर हम घटित कर रहे उपार्थ पुद्गल परिवर्तन, वो तो वेदक वाले के और औक्षणिक वाले के ये घटित हो। इसलिए उन्होंने कहा जहाँ जो अपने अपने विषय में जो अंतर अविरोध रूप से जैसे उत्पन्न होता है उसको लेना, प्रथमोक्षम वाले का भी इतना ही होगा अंतर और वेदक वाले का भी होगा, कुछ कम अर्ध पुद्गल पर। हाँ, हो सकता है ना, ज्यादा काल रहेगा ऐसा जो कह रहे हैं ना। हाँ, अंतर क्योंकि उसने उपशम का काल पूरा करके वेदक शुरू किया, फिर वो वहां से वो नीचे गया, वैसे वैसे ये तो हमने देख लिया अंतर। अब कहते हैं अठम नवन्नम पैरीनम पवेशक अंतरम केवचिरम कालादो होदी, आठ और नौ प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतर कितना है यह सूत्र सुगम है। तो कहते जहन्ने न एयसमो, कितना है क्वेश्चन मार्क, नीचे और ऊपर दोनों जगह केवचिरम कालादो होदी। कितना है अंतर तो क्वेश्चन मार्क डालना, यह सूत्र सुगम है। जघन्य ने ये समूह, जघन्य अंतर एक समय है, वह कैसे, कोई एक आठ प्रकृतियों का प्रवेशक असंयत वेदक समय दृष्टि जीव, ये आठ वाला होता है, मिथ्यात्व वाला भी होता है, सासाधन वाला भी, मिश्र वाला भी और चौथे वाला भी हो सकता है। अब यहाँ असंयत वेदक समय दृष्टि लिया, भय की उदीर्णा में एक समय काल बचा है कि वह जुगुप्सा के उदय से परिणत हो गया, यानी आठ वाला नौ का हो गया, और वहाँ एक समय तक उसका अंतर करके फिर से तदनंतर समय में भय की उदय विच्छित करके आठ प्रकृतियों का प्रवेशक हो गया, यानी पहले आठ वाला था, एक समय के लिए ओवरलैप हुआ ना तो नौ का हो गया और फिर वापस आठ का हो गया। इस प्रकार आठ प्रकृतियों के प्रवेशक का एक समय अंतर प्राप्त हुआ, अथवा यह जीव भय की उदय विच्छित्ति करके, यानी वह आठ वाला था, भय की उदय विच्छित्ति हुई, एक समय तक जुगुप्सा का उदय ही नहीं हुआ तो वो सात वाला हो गया वहाँ पर, और फिर वापस जुगुप्सा जब आए तो आठ का हो गया। तो एक समय तक सात प्रकृतियों का प्रवेशक होकर और उसका अंतर करके अनंतर समय में जुगुप्सा के उदय से अंतर को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है यानी समाप्त करता है, ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि और सांसाधन सम्यक दृष्टि जीवों में भी आठ प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर जानकर उसकी योजना करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी नौ आठ और सात ये तीन स्थान होते हैं, तो उसमें भी इस तरह से आठ में से नौ में आया या सात में चला गया एक समय के लिए।
या मिथ्या दृष्टि भी ये अंतर एक समय में ही हो सकता है आठ नौ दस का मिथ्या, आठ नौ तो मिथ्या दृष्टि के भी स्थान है।
हाँ, कर सकते हैं ना,
कर सकते हैं।
आठ वाला कौन सा है, दस नौ आठ वाला है।
आठ वाला तो भैजू को सब दोनों का उदय नहीं है,
वो कौन सा वाला लेना, नौ वाला मिथ्या दृष्टि को अनंत अनुबंधी वाला लेना, अवधिकाल वाला, क्योंकि तब वो इधर सात वाला हो सकता है। सात वाला कौन सा है, रहित वाला है,
रहित।
और दोनों का भय या जुगुप्सा का जो उदय कहते हैं वो तो अनंत अनुबंधी रहित वाले की होगा, और अकेला ऑर्डिनरी मिथ्या दृष्टि है उसके लिए आठ में से केवल नौ होकर वापस आठ में आने का इतना एक ही चांस है, उसको सात में जाके वापस आने का चांस नहीं है। तथा नव प्रकृतियों के प्रवेशक का मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में इसी प्रकार भय जुगुप्सा के अवलंबन से यह जघन्य अंतर जान लेना चाहिए। आठ और नौ की बात चल रही थी ना शामिल देने से, तो मिथ्यादृष्टि को नौ वाला लिया, नौ से आठ और फिर नौ, या नौ से दस और फिर नौ, ये वहां घटित हो दोनों तरफ से
दोनों तरफ।
अब कहते उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। अब यहाँ उपार्ध पुद्गल परिवर्तन नहीं लिया क्योंकि आठ और नौ वाले जो स्थान वो मिथ्या दृष्टि के ही है, तो उसका अंतर नहीं हो सकता। वो यथा एक मनुष्य वेदक समय दृष्टि जीव ने,
तो मिथ्या दृष्टि को भी आठ का अंतर होगा ना, आठ का
उदय है, कितना होगा अंतर्मूर्त होगा, अधिक नहीं होगा। हमें उत्कृष्ट अंतर देखना है, जघन्य तो बता चुके वो, तो मिथ्यात्व में रहते हुए उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त हो जाएगा उसका। यदि हम गुणस्थानों में अंतर देख रहे हैं तो वो तो घटित होगा, परंतु यहाँ हम ओघ से अंतर देख रहे हैं और वो भी हमें उत्कृष्ट चाहिए, तो उत्कृष्ट के अंदर अंतर्मूर्त तो मिल गया उनको, तो अंतर्मूर्त नहीं है वो बात नहीं है, पर वो उत्कृष्ट अंतर नहीं कहलाए। जब हम उत्कृष्ट अंतर लाना चाहते हैं तो जहाँ कहीं भी मैक्सिमम पॉसिबल है उसको लेना है, तो यहाँ भी हम आठ और नौ का उत्कृष्ट अंतर देखना चाहते हैं। देखो आठ और नौ वाला सम्यक दृष्टि भी हो जाए तो वहाँ भी उसके आठ नौ का है ही, नौ आठ सात छः है ना चौथे वाले के, तो उसका अंतर नहीं कहलाएगा। वहाँ जाने के बाद अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसको आठ या नौ का तो प्राप्त होता रहेगा, तो मिथ्या दृष्टि को सम्यक भी बनाने से कुछ फायदा नहीं है। तो ऐसे गुण स्थान में ले जाओ कि जहाँ नौ वाला स्थान नहीं होगा, नहीं होगा आठ वाला भी नहीं होगा, तो मिथ्या तो में तो था, चौथे वाले को भी है, पांचवे वाले को नौ का नहीं है, आठ सात छः पाँच है,
तो
नौ वाले के लिए पांचवे में ले जा सकते, और आठ वाले के लिए और ऊपर ले जाओ तो सात छः पाँच चार सातवें गुणस्थान में ले जाओ, सातवें छठवें में, तो उसको संयत रखो ना। पहले आठ या नौ का स्थान था उसको संयत बना दिया, नौ वाले के लिए पांचवा गुणस्थान में जाए तो भी चलेगा, और आठ वाले के लिए संयत बना दो तो आठ का अंतर हो गया। अब ये कब पॉसिबल है, मनुष्य में पूर्व कोटि का भव है पांचवें के लिए तो तिरंज भी चलेगा, परंतु हमें आठवें का अंतर करना है तो उसको संयत बनाना है, तो मनुष्य का बहुत बड़ा भव है पूर्व कोटि, तो आठ साल के पश्चात उसने संयत संयम प्राप्त किया, तो संयम प्राप्त किया तो उसका आठ का नौ का अंतर हो गया, तो संयम ही बना रहा। अंतर प्राप्त करना है तो वापस उसको लाना है, तो क्या करना बाद में,
वापस इसे लिखा
वापस नीचे कहो कब लाना है उसको,
अंत में अंत में आयु के अंत में उसको
मनुष्य की मार्गणा होगी तो अंत में लाना है, और ओह में है तो देव में भेजो ना, उसको नीचे को क्यों लाते
हैं, अंतिम समय में मरण हो गया उसके।
हाँ तो मरण हो गया तो चौथे में आ गया, चौथे में आ गया तो वहाँ तो सात का नौ का वगैरह तो यानी आठ का और नौ का स्थान प्राप्त होगा फिर दोबारा।
ये मनुष्य में हम लोग उत्तम भोगी का भाव नहीं ले सकते ना, नहीं
पांचवा संयम ही बनाया आपने उसको,
और संयम बनाया सॉरी,
मनुष्य की आयु बांधी है तो पांचवा या सातवा नहीं हो सकता उसको। अभी हम यहाँ से पढ़ेंगे। एक मनुष्य वेदक समय दृष्टि जीव ने गर्भ से लेकर आठ वर्ष के बाद आठ प्रकृतियों की उदीर्णा का प्रारंभ करके अनंतर नौ प्रकृतियों का प्रवेशक होकर उसका अंतर किया, आठ में से नौ में आया और उसका अंतर किया, नौ में आया ने भय जुगुप्सा दोनों का उदय शुरू किया, यानी वो आठ का अंतर किया, आठ में से नौ आया तो आठ का अंतर शुरू हुआ, अनंतर विशुद्धि को पूर्ण करके और संयम को ग्रहण कर। अब डायरेक्ट संयम ही हुआ, पहले आठ वाला था, नौ में चौथे में रहते हुए नौ में आया तो आठ का अंतर हुआ, इसके पश्चात उसने संयम ग्रहण किया, कभी आठ का भी नहीं रहा, नौ का भी नहीं रहा। अनंतर विशुद्धि को पूर्ण करके और संयम को ग्रहण कर, पूरे पूर्व कोटि काल का अंतर देखा। पूरे पूर्व कोटि कहाँ क्रम से वहां मरा और देह हो गया, फिर उसके अंतर्मूर्त काल जाने पर भय और जुगुप्सा इनमें से किसी एक की उदीर्णा करने पर आठ प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतर प्राप्त हो जाता है। यानी पहले में पहले उसको आठ वाला नहीं बनाया, पहले नौ वाला बनाओ या पहले सात वाला बनाओ, बाद में आठ पर ले आए, अंतर बढ़ाना था ना इसलिए। इस प्रकार अंतर्मूर्त अधिक आठ वर्ष कम एक पूर्व कोटि प्रमाण आठ प्रकृतियों के प्रवेशक का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये बात ख्याल में आई मंजू बहन? देखो देखो, आठ प्रकृतियों पहले कैसे चौथा गुणस्थान था, चौथा गुणस्थान तो कौन सा था, वेदक सम्य दृष्टि था, तो वेदक सम्यक दृष्टि जो है ना उसका एक सम्यक प्रकृति है, तीन कषाय है, एक वेद है, एक युगल है, तीन एक चार एक पाँच दो सात, सात और भय या जुगुप्सा वाला था तो आठ वाला था, आठ वाला था तो दोनों का उदय शुरू हुआ, भय का था जुगुप्सा भी शुरू हो गई तो नौ का हो गया, तो अंतर्मूर्त उसका बीत गया और उसने विशुद्धि प्राप्त करके संयम प्राप्त किया। तो संयम प्राप्त करने पर क्या हुआ, उसका वेदक समय दृष्टि था तो वेदक ही रहा, तो ये दो यहाँ तो दो बढ़ गए थे, नौ हो गए थे, यहाँ एक एक हो गया, तो अभी कितने हो गए, एक दो तीन दो पाँच, हाँ दो सात भी ले सकते हैं, छः भी ले सकते हैं, पाँच भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें तो उनका परिवर्तन होता ही रहेगा, संयम ही है जब तक। तो पूर्व कोटि तक जो रिमेनिंग काल है, आठ वर्ष कम करो पूर्व कोटि में से, तो उतने काल तक संयम ही रहा, तो उनके ये अन्य अन्य स्थान हुए। अब जाके देव में जन्मे, तो देव में गए तो चौथा गुणस्थान हुआ, तो फिर यहाँ तीन तीन हो गए उनके, तो तीन एक चार पाँच दो सात, सात में से फिर पहले जीरो ही रखो तो सात वाला होगा, हमें आठ और नौ का अंतर करना था, और बाद में उसको भय या जुगुप्सा या दोनों का जैसे चाहिए उसको हम उदय शुरू हो जाएगा तो उसका अंतर समाप्त हो जाएगा।
आठ का अंतर मिथ्या दृष्टि को नहीं करवा सकते ना,
जो आपका प्रश्न है आठ का अंतर अभी मिथ्या दृष्टि को कराओ,
नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक आठ वर्ष में उसने उसके पहले उसने नग्नत्व धारण किया और उसने सातवां गुणस्थान प्राप्त किया अंतर में, तो आठ का उदय मिथ्या दृष्टि को था, पूरा काल तक वो संयत रहा और पीछे अंत में जाकर मरण हो गया, ऐसे नहीं हो सकता है ना, इसी तरह
हो सकता है ना, आठ का अंतर करण है, वो आठ वाला जीव कौन है, यहाँ तो उन्होंने चौथे वाला लिया है,
पर वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है।
हाँ मिथ्या दृष्टि ने संयम प्राप्त किया, उसका भी आठ का अंतर हो गया, मिथ्या दृष्टि था आठ के उदय वाला था, क्योंकि हमने दस नौ नौ आठ यानी भय जुगुप्सा दोनों नहीं थी और उसने अंतर कर दिया, मिथ्या तो में रहते हुए उसको आठ से नौ भी हो सकता है, नौ से दस भी हो सकता है, तो आठ का अंतर किया और बाद में उसने संयम धारण किया और संयम धारण करके संयम ही रहा, फिर जाके देव में तो उसका भी अंतर होगा।
नहीं मेरा मुझे इसे लगा कि क्या आठ साल में वो डायरेक्ट संयत हो सकता है,
बिल्कुल हो सकता है, अनादि मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, यहाँ तो वेदक समय पर उन्होंने घटित किया है। ये उन्होंने आठ का उत्कृष्ट अंतर बताया। शायद इसका विशुद्धि का जो काल है या संयम धारण करने का जो अंतर्मूर्त है वो छोटा हो सकता है, इसलिए उन्होंने वेदक समय दृष्टि को संयम धारण कराया। मिथ्यात्व में से वो विशुद्धि का काल शायद बड़ा भी हो सकता है, अभी पता नहीं उन्होंने इसी को क्यों लिया। अब यहाँ कहते हैं अब नौ प्रकृतियों के प्रवेशक का उत्कृष्ट अंतर कहने पर जो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव जिसकी सत्ता नहीं है उसमें कुछ अंतर काल में कुछ अंतर होना चाहिए अंतर्मूर्त वाला, इसलिए यहाँ वो भी 28 की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि लिया। पूर्व कोटि की आयु वाले सम्मूर्छन तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ, अभी नौ का अंतर कराना है, आठ के अंतर के लिए तो उसको संयमी बनाना आवश्यक था, अब नौ के अंतर के लिए उसको पांचवें गुणस्थान में ले जाए तो भी चले, तो पांचवें गुणस्थान में अगर मनुष्य जावे तो उसको आठ साल के लिए रुकना पड़ेगा
यहाँ पे अंतर्मूर्त,
और अंतर्मूर्त में पांचवा गुणस्थान प्राप्त कराना है तो तिर्यंचों में सम्मूर्छन में हो सकता है, परंतु सम्मूर्छन में एक क्या विशेषता है प्रतिभाताई, पांचवा गुणस्थान तो प्राप्त हो सकता है, उसकी विशेषता मालूम है आपको, वो कौन सा सम्यक होगा, वेदक ही होगा, उसके लिए आवश्यक क्या है, 28 की सत्ता वाला होना चाहिए। जन्म लिया उसने तिर्यंच में, पूर्व भव में कभी उसने सम्यक प्राप्त करके छूट गया था और उसकी 28 की सत्ता थी, वो सम्मूर्छन तिर्यंच हुआ पूर्व कोटि की आयु वाला, अब वो अंतर्मूर्त में ही पर्याप्ति भी पूरी करता है और अंतर्मूर्त में उसको सम्यक हो सकता है वेदक सम्यक, इसलिए लिया जी, क्योंकि उसको पूर्व कोटि में से शीघ्र पांचवा गुणस्थान प्राप्त कराना, मनुष्य में तो आठ वर्ष बात करने पड़ते हैं, उसको माइनस करना पड़ता है पूर्व कोटि में से, इसलिए यहाँ कौन सा लिए जीव, नौ प्रकृतियों के प्रवेशक का उत्कृष्ट अंतर कहने पर जो 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व कोटि की आयु वाले सम्मूर्छन तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ और जिसने छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर उस रूप से विश्राम किया। देखो वहां तो पर्याप्ति का एक अंतर्मूर्त, छह पर्याप्ति पूरी की, फिर विश्राम का एक अंतर्मूर्त,
और पीछे
हाँ पुनः वहीं पर नौ प्रकृतियों के प्रवेशक का प्रारंभ करके अंतर किया। यानी उस बीच अभी उसने वो पर्याप्ति पूरी होने पर विश्राम करने पर वो नौ प्रकृतियों का प्रारंभ हुआ वहीं पर मिथ्यात्व अवस्था में, फिर सर्व विशुद्धि के साथ सम्यक्त्व सहित संयमा संयम को प्राप्त कर, तो पहले से समय दृष्टि था कि नहीं था, नहीं तो तिर्यंचों में उत्पन्न नहीं होता, वापस सम्मूर्छन तिर्यंचों में उत्पन्न हुआ है तो ये मिथ्यात्व अवस्था में ही उत्पन्न हुआ है।
ये सम्मूर्छन जी थ्रू आउट द लाइफ प्रथम ऑप्शन नहीं था, प्राप्त कर सकते हैं
नहीं, सम्मूर्छन जीवों में औपचारिक समय तो होता ही नहीं थ्रू आउट लाइफ,
थ्रू आउट द लाइफ
ये पर्याप्त तिर्यंचों में ही गर्भजों में ही होता है, ये कंडीशन है प्रथम ऑप्शन सम्यक्त्व की कंडीशन है, वो गर्भजों में ही होता है। आप कहेंगे देव कहाँ गर्भज होते हैं, ये गर्भज वाली कंडीशन मनुष्य तिर्यंचों के लिए है, मनुष्य सम्मूर्छन तो अल्प आयु में मर जाते हैं, उनके तो पात्रता भी नहीं है, उनकी तो पर्याप्ति भी पूरी नहीं होती, परंतु सम्मूर्छन तिर्यंच ही ऐसे है कि है सम्मूर्छन परंतु उसकी पूरी इतने लंबी आयु वाले हो सकते हैं पूर्व कोटि वाले, और उनमें जो संजीव सम्मूर्छन है तिर्यंच उनमें तो सम्यक्त्व की भी योग्यता होती है, ऐसे असंख्यात सम्मूर्छन तिर्यंच पांचवें गुणस्थान वाले हैं असंख्यात, और स्वर्गों में उनका नंबर लगेगा क्या मनुष्यों का लगेगा स्वर्ग में जाने वाले मनुष्य तो संख्यात हो गए कि नहीं हो गए,
उनका ही नंबर लगेगा
लोगों को स्वर्गों में जाने की बहुत चाह है, अरे किसी भी भाव में क्यों ना हो सम्यक तो प्राप्त करने की मुख्यता नहीं देती जीवन को, अरे कौन सा परिणाम रखूं तो कहाँ जाऊंगा मैं, कहाँ जन्म लूंगा, आम तो लोग ऐसे ही सोचते हैं परिणाम कैसे रखूं, जैसे इनकी कंट्रोल की बात है परिणाम रखना.
सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो वो भी नहीं रहेगा ना, कहाँ पे उत्पन्न होना है क्या है,
कुछ नहीं उसकी की चिंता है. उसने तो अपने को इस भाव से शरीर से तो भिन्न मान लिया है. संयोग अच्छे हो या बुरे हो वो अपने से भिन्न ही है, तो उसको चिंता किस बात की. और जिसको चिंता नहीं उसके तो अच्छे ही मिलने वाले हैं भाव फिर भी. नीचे से चौथी, हाँ पुनः वहीं पर नौ प्रकृतियों के प्रवेश का प्रारंभ करके, प्रवेश का प्रवेशक तो जीव करेंगे कहेंगे हम. फिर सर्व विशुद्धि के साथ ये हो गया. सम्यक तो सही संयमा से हमको प्राप्त कर कुछ कम एक पूर्व कोटि का अंतर देकर भव के अंत में देवों में उत्पन्न हुआ. और वहां चौथा गुणस्थान वाला हुआ, उसके वहां पर अंतर्मूर्त काल जाने पर उक्त पद का अंतर प्राप्त हो जाता है, ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए. वहां भी एक अंतर्मूर्त रुका ना उसको, क्योंकि वो नौ पर लाना है उसको वापस, तो पहले अन्य उसके प्राप्त कराएंगे. नौ आठ सात छः सात तक से नौ आठ सात तीनों ही पॉसिबल है. अब हम दस प्रकृतियों की बात देखेंगे. दसन्नम पैडिनम पवेगस्स अंतरम केवचिरम कालादो होदी. दस प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कितना है, तो इसका अर्धपुद्गल परावर्तन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के ही है दस वाला स्थान, अन्यत्र कहीं है ही नहीं. तो भले अंदर पुद्गल परावर्तन के असंख्यात पुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात्व में रहे, तो भी वो दस वाला स्थान तो लौट कर आने वाला है वो अंतर्मूर्त में मिथ्या दृष्टि रहते हुए. अभी एक ही तरीका है उसका, दस का स्थान नहीं हो गए तो उसके ऊपर के गुण स्थान में भेज दो. दूसरे तीसरे में कुछ दूसरे में जाता नहीं, तीसरे में जाए तो भी अंतर्मूर्त है, तो चौथे में और ऊपर के गुणस्थानों में उसको लगातार कितना रख सकते हैं हम. हाँ दो चाह सकता है, क्योंकि दस वाला स्थान ही नहीं हो ऐसी बात है. वहाँ ऊपर है तो नौ होता है, आठ होता है, सात होता है. तो हम अभी यहाँ पढ़ेंगे. दस प्रकृतियों के प्रवेशक का अंतरकाल कितना है, यह पृच्छा सूत्र सूत्र करना. सुब्र हुआ है ना सूत्र, सुगम उसका उत्तर बताते हैं. ये ऊपर फ्लावर ने बनाया सूत्र के लिए. जहन्ने न अंतमूर्तम, इसलिए वो उसकी जगह भी नजदीक छाप लिया, थोड़ा स्पेस छोड़ के छापना था. जहन्ने न अंतमूर्तम, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि जो दस प्रकृतियों का उदीरक जीव भय की विच्छित्ति के साथ सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक अनर्पित पद के द्वारा, अनर्पित पद यानी कौन सा,
नौवा,
यहाँ अर्पित यानी दसवा जिसकी हम बात कर रहे हैं. दस को छोड़कर जो है वो अनर्पित पद है. पहले भय जुगुप्सा दोनों का उदय था, अभी उसमें से वो एक का उदय मिट गया तो नौ वाला हो गया. तो कहते कि दस प्रकृतियों का उदीरक जीव भय की विच्छित्ति के साथ सबसे जघन्य अंतर्मूर्त काल तक अनर्पित पद के द्वारा उसका अंतर करता है, उसके उक्त पद का उक्त अंतरकाल उपलब्ध होता है. वापस भय का उदय होने के लिए अंतर्मूर्त चला जाएगा बीच में, क्योंकि अभी तो जुगुप्सा की अकेले की कर रहा है, फिर दोबारा उसमें भय ज्वाइन हो जाएगा तब उसका दस वाला स्थान होगा.
ये आठ वाला भी हो सकता है ना,
तो हमें तो जघन्य अंतर चाहिए.
हाँ बराबर है, पर दस से आठ वाला भी हो सकता है,
फिर भी अंतर्मूर्त चला जाएगा, फिर भी वो बड़ा अंतर्मूर्त होगा.
अच्छा वो बड़ा
क्योंकि अभी यहाँ देखो भय और जुगुप्सा का एक साथ कर रहा है, एक साथ शुरू किया ऐसा नहीं कहा. ये भय और जुगुप्सा दोनों का चल रहा है एट ए टाइम, मान लेते यहीं पर उसने जुगुप्सा चालू किया. ये भय का अकेले का चल रहा था, भय जुगुप्सा का दोनों का एक साथ चल रहा है. ये तो एक समय वाला भी ओवरलैप हो सकता है और थोड़ा अधिक भी ओवरलैप हो सकता है. अभी हर एक का अपना अपना अंतर्मूत है. ये भय का अंतर्मूत यहाँ पर, उतना ही जुगुप्सा का अंतर्मूत हो जाएगा तब जाके भय की अपना उदय शुरू हो जाएगा फिर से. तो फिर से जब भय का उदय शुरू हो जाता है यहाँ, हो सकता है यहाँ भी ओवरलैप हो जाए. तो ये जो बीच वाला है, अकेला जुगुप्सा वाला था, वो जघन्य अंतर्मूत का पहले भी दोनों ओवरलैप थे, अकेला जुगुप्सा था, फिर भय का शुरू हो गया. तो उसका वो जघन्य अंतर है. अब उत्कृष्ट अंतर देखना. उपकसेना बे छावट्टी सागरो वमानी साधी रेयानी. उत्कृष्ट अंतर साधिक दो छासर सागर प्रमाण है. यथा देखो साधिक कैसे करना, समय दृष्टि तो दो छासर सागर तक रखना, यानी बीच में अंतर्मूत वो समय मिथ्यात्व को समझता है. और इसका काल और कैसे बढ़ा सकते हैं, तो मिथ्यात्व में रहते हुए दस में से नौ, नौ में से आठ हुआ और फिर उसने समय को प्राप्त. वापस जब मिथ्यात्व में आएगा तो पहले आठ और नौ में रखो और फिर बाद में दस में लाओ, तो उसका उतना काल और बढ़ जाएगा. यथा किसी एक दस प्रकृतियों के प्रवेशक मिथ्यादृष्टि जीव ने अनर्पित पद के द्वारा अंतर्मूर्त काल तक उसका अंतर किया. यानी मिथ्यात्व में रहते हुए उसका अंतर कितना होगा, एक अंतर्मूर्त. वो दस में से नौ में जाए, नौ में से आठ में जाए, वापस नौ में आए या दस में आए, जो कुछ हो, अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं होगा. तो वहां उसने दस का अंतर किया, अंतर्मूर्त तक रहा. फिर सम्यक्त्व को ग्रहण कर और दो छासर सागर काल तक भ्रमण कर पुनः मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मूर्त में जो दस प्रकृतियों का प्रवेशक हो गया, तत्काल नहीं हुआ, एक अंतर्मूर्त के बाद हुआ, उसके उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होता है. इस प्रकार ओघ से, ये सब जो हमने देखा था ओघ की बात है, क्योंकि वो पूर्व कोटि वाले को भी अंत समय का सम्मार कर वो देव में गया था, तो ये ओघ में हो सकता है. अकेले मनुष्य में रखना है तो उसको वापस मनुष्य में नीचे लाना है. ओघ से सब उदीर्णा स्थानों के अंतर की प्ररूपना की. अब कहते हैं, अब आदेश का कथन करने के लिए यहाँ पर उच्चारणा का अनुगम करके बतलाते हैं, यानी उच्चारणा के द्वारा पूरा अंतर अनुगम फिर बताएंगे.
ये भैजुगुप्सा का उदय अबुद्धिपूर्वक ही होता रहेगा ना, अंतर्मूर्त अंतर में
सबका ही अबुद्धिपूर्वक होता है. हम कोई बुद्धिपूर्वक कर ही नहीं सकते. बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है,
जो हम लोग का ख्याल
तो समझ कर. नहीं नहीं, ख्याल में आए हुए ऐसी बात कर रहे हैं आप, ख्याल की बात कर रहे हैं क्या, सोच समझ की बात कर, ख्याल की बात कर रहे हैं. तो बुद्धिपूर्वक हो या अबुद्धिपूर्वक हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है.
ऐसा मेरा क्वेश्चन था, बुद्धिपूर्वक ही अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में होता रहेगा,
क्योंकि हरेक कषाय, यानी जब अपना बुद्धिपूर्वक भी चल रहा है तो अबुद्धिपूर्वक भी वहां चल ही रहा है. बात बुद्धिपूर्वक तो कोई ऐसा भय की बात नहीं दिख रही आपको,
हाँ.
तो अबुद्धिपूर्वक में चल रही है कि चल रही है, कितने ही कषाय अबुद्धिपूर्वक. जैसे अभी कुछ, अभी हम देख रहे उदय के कूट देख रहे हैं,
हाँ.
तो उदय के कूट में हमने एट ए टाइम इतने देख रहे हैं, तो उसमें कितने बुद्धिपूर्वक ख्याल में आ रहे हैं. कषाय तो ठीक है, क्रोध आ रहे तो ख्याल में आ जाएगा, वेद की बात ख्याल में आ रही, हास्यरति की ख्याल में आ रही है, भैजुगुप्सा की आ रही है. उदय रूप इतने प्रकृतियों में से सभी आपको एट ए टाइम ख्याल में आ रही है क्या? जो एक ही भय की बात होगी तो उस समय क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, वो कहाँ पता चला है? उदय तो सबका है कि नहीं, एक साथ उदय सबका होते हुए भी हमारी पकड़ में कितने आते हैं? क्या अभी हम कह सकते हैं हमारा आठ का है कि नौ का है कि सात का है कि दस का है, कितने का है? ये तो आगम से हमें पता चलता है.
नहीं, बाकी तो थोड़ा थोड़ा भाषित होता है, ये तो जरा भी ख्याल में नहीं आता है, और ये अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटता रहता है, इसीलिए
ये तो निरंतर चल ही रहे ना उसका उदय, और पलटता भी रहता है निरंतर,
हाँ.
कभी अकेला भाई, कभी अकेली जुगुप्सा, कभी दोनों एक साथ में, कभी दोनों भी नहीं, ऐसा भी होता है, फिर भी बंद हर समय चल रहा है.
क्योंकि भाई तो अभी थोड़ा भी ख्याल में आता है, जुगुप्सा ख्याल में नहीं आएगा अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त.
नहीं आता है तो अच्छा है ना। ये उत्कृष्ट अंतर हमने देखा, अभी आदेश देख रहे हैं। अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओ और आदेश। ये उच्चारणाचार्य फिर दोबारा ओ की भी बात करेंगे। ओ से दस प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। उन्होंने दस से शुरू किया, वहाँ उन्होंने मूल में एक से शुरू किया था। और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम दो छियासठ सागर है, जो अभी अभी हमने पढ़ा।
वहाँ पे
उत्कृष्ट अंतर, एक मिनट, कुछ कम दो छियासठ सागर। अच्छा, इन्होंने कुछ कम लिख दिया। नौ और आठ प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। वो तो हमने देखा था, आठ वर्ष माइनस कर दिए थे हमने, नौ और आठ दोनों को लिए थे। सात छह और पांच प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि ये उनको भेजा था नीचे मिख्यात। चार दो और एक प्रकृति के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये जघन्य अंतर के लिए हमने उपशम श्रेणी चढ़ा के उत्तर है, और उत्कृष्ट अंतर के लिए एक बार श्रेणी चढ़ के फिर वो मिथ्यात में गया आदेश से। नारकियों में दस और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर। अब देखो, नारकी है, अधिक से अधिक दस प्रकृतियों का स्थान है और कम से कम छह का है। छह वाला किसके होगा?
शाइक।
हाँ हाँ, पहले नरक का शाइक, और सातवें नरक में घटित करना है तो औपशमिक समय दृष्टि, औपशमिक समय दृष्टि चौथे वाला है। चौथे में स्थान कौन सा है? नौ आठ सात छह। छह वाला कौन सा है? औपशमिक या क्षाइक। पहले नरक में तो क्षाइक को ले सकते हैं, परंतु नीचे वाले औपशमिक हो गए ना। हाँ, औपशमिक तो सर्वत्र हो गए। तो नारकियों में दस और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। अभी दस वाला है तो मिथ्या तो में रहते हुए वो अन्य हो गया ना। नौ वाला हो गया, वापस दस का हो गया, या नौ आठ का हो गया। और छह में कैसे घटित करेंगे?
एक बार प्रथम अक्षर के और अंत में जाकर वापस,
क्योंकि प्रथम अक्षर के काल में भय का उदय नहीं हो सकता क्या?
हो सकता है।
वो तो वापस करने के लिए उत्कृष्ट अंतर होगा, हमें जघन्य अंतर चाहिए।
नहीं, मैं उत्कृष्ट की बात कर रहा हूँ।
नहीं, उत्कृष्ट अभी हमने देखा ही नहीं, हमको जघन्य अंतर चाहिए। जघन्य अंतर छह का जघन्य कैसा हुआ? उसका औपशमिक का काल चल रहा है, वो छह वाला है। छह वाला यानी भय गुप्सा दोनों नहीं है,
नहीं है।
एक का उदय हो जाए फिर वापस मिट जाए तो हम क्या कहेंगे? वापस आया वो छह पर, तो अंतर्मूर्त होगा। सात प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, जिसे हमने देखा था। सात प्रकृतियों के उदीरक था, सात प्रकृतियों का था तो एक
सात प्रकृति
यही ले सकते उपशम वाला, जो भय के साथ सात का कर रहा है, और फिर सात में से या तो छह में आ गया वापस सात में। ये भय का था एक समय के लिए, कुछ भी नहीं रहा, और फिर जुगुप्सा का शुरू हुआ, तो सात छह और फिर सात, या सात से आठ में जाके फिर सात हो गया, तो जघन्य अंतर एक समय। और सबका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम तैतीस सागर है। नारकियों में घटित करना है तो कुछ कम तैतीस सागर। नौ और आठ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है, और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। ये तो नौ और आठ प्रकृतियों के उदीरक तो मिथ्या तुम्हें भी है, सासदन वाले को भी है, तीसरे वाले को भी है, चौथे वाले को भी है, तो उसमें तो भय गुप्ता के उदय बदलने से उनका अंतर हो सकता है, वो अंतर्मूर्त होगा अधिक से अधिक। इसी प्रकार शरणार्थियों में जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अब इसी का विशेषार्थ है, विशेषार्थ ओव से 10, 9, 8 और 7 प्रकृतियों के उदीरक का जो जघन्य अंतर काल घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी वह घटित कर लेना चाहिए। हमें देखा भय का हो रहा था, एक समय के लिए जुगुप्सा ज्वाइन हो गई तो दोनों का हो रहा है,
और वापस
फिर भय का मिटा और जुगुप्सा चल रहा है, तो अंतर एक समय का। या एक समय के लिए दोनों का उदय नहीं था, ऐसा भी हो सकता है, तो भी एक समय अंतर घटित होगा, उससे कोई विशेषता नहीं, इसलिए यहाँ पर उसका अलग से खुलासा नहीं किया है। रह गया मात्र 6 प्रकृतियों के प्रवेशक का जघन्य अंतर काल का खुलासा। ये तो हमने पढ़ा नहीं था, मगर हमने सोचा था, अभी देखेंगे क्या लिखते हैं। सो जो उपशम समय दृष्टि या क्षायिक समय दृष्टि जीव भय और जुगुप्सा का अनुदीरक होकर, यानी दोनों नहीं है उसके, 6 प्रकृतियों का उदीरक होता है, ये नारकियों के लिए मिनिमम पॉसिबल स्थान, वह भय और जुगुप्सा की उदीरणा द्वारा इसका अंतर करके पुनः कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के बाद, अंतर्मुहूर्त के बाद ही उसका अनुदीरक होकर इस स्थान को प्राप्त कर सकता है, यानी एक समय में वापस इस पर नहीं आ सकता। ये बात बता, दोनों का ही उदय नहीं था, अब एक का या दोनों का उदय शुरू हुआ तो वापस फिर दोनों का नहीं होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त जाएगा, इसलिए इसका जघन्य अंतर एक अंतर्मुहूर्त बताएं। हाँ, उपशम समय दृष्टि का काल बड़ा है, उसमें योगों का भी पलटना कितना होता है, इसका भी पलटना होता है, कषायों का भी।
पर वहाँ पे तो अंतर भी घटित नहीं होगा ना, मिथ्या दृष्टि को तो 8, 9, 10 का स्थान है, और उपशम समय तो 6 का स्थान होगा, तो वापस उतने काल में
6, 7, 8 है ना, 3 स्थान,
तो वापस उपशम के काल में वापस 6 का हो सकता है,
है ना, तभी तो अंतर घटित होगा, नहीं तो 6 वाला अंतर ही घटित नहीं हुआ, नहीं तो नारकियों में
साइक में साइक की अपेक्षा सोच रहा था,
साइक हो या उपशम हो फर्क नहीं पड़ता कुछ, यानी आपको कहना है साइक लंबे काल तक है इसलिए उसका अंतर हो सकता है,
नहीं नहीं साइक में भी अंतर्मुहूर्त उदय नहीं है और उदय चालू हो गया है,
उसके लिए भी उतना ही अंतर होगा, साइक है इसलिए अंतर उसका कम ज्यादा ऐसी नहीं बात, ये तो भय जुगुप्सा के उदय रूप के कारण ही यहाँ अंतर घटित हो रहा है। यही कारण है कि नारकियों में 6 प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त कहा है। देखो ये जो बीच वाली है ना, 7 वाला होगा भले वो उपशमी समय दृष्टि हो, तो उसका एक समय वो अंतर दोनों तरफ घटित होता है, 6 में जाके आया या 7 वाला 8 में जाके आया, क्योंकि वो जो दोनों का ओवरलैपिंग हो सकता है, भले दोनों का अपना अपना काल अंतर्मुहूर्त है, फिर भी ओवरलैपिंग अवस्था एक समय तक बन सकती है। 6 वाला कैसे एक्सट्रीमल स्थान जहाँ भय और जुगुप्सा दोनों ही नहीं है, अब दोनों ही नहीं है तो उसके अगर फिर जुगुप्सा का या भय का उदय होकर फिर वापस दोनों नहीं है होने के लिए अंतर्मुहूर्त जाएगा ही। छह में से 8 हुआ और फिर 7 हुआ, सॉरी 6 हुआ, तो ही जघन्य अंतर होगा। 6 में से डायरेक्ट 8 हो गया और वापस 6 हो गया, क्योंकि 7 भी होगा तो और फिर वो दोनों एक साथ, यानी अकेले भय का होकर फिर वापस आना पड़ेगा, तो हो सकता है, या दोनों को साथ में लेकर फिर वापस आए तो भी हो सकता है, दोनों की बात। 6 में से अकेले भय का उदय हुआ और वापस दोनों का ही ऐसा नहीं होगा, वहाँ जुगुप्सा का तो उदय
हो जाएगा ना, जुगुप्सा का होगा, तो दोनों का साथ में उदय करके साथ में
विच्छेद करा। यह तो सब पदों के जघन्य अंतरकाल का विचार है। उत्कृष्ट अंतरकाल का खुलासा इस प्रकार है, जो नारकी भव के प्रारंभ में और अंत में 10 प्रकृतियों का उदीरक होकर मध्य में कुछ कम 33 सागर काल तक सम्य दृष्टि हो, मिथ्या तो में ही रखते तो वापस अंतर्मुहूर्त में 10 पद आ जाता, पर अभी उसको बीच में समय दृष्टि रखी, तो समय दृष्टि रखा तो उसका 9, 8, 7 में घूमेगा वो। समय दृष्टि हो 10 प्रकृतियों का अनुदीरक बना रहता है, उसके 10 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर प्राप्त होने से तत्प्रमाण कहा है। तथा जो नारकी जीव भव के प्रारंभ में और अंतर में सम्य दृष्टि होकर 7 और 6 प्रकृतियों का उदीरक होता है और मध्य में कुछ कम 33 सागर काल तक मिथ्या दृष्टि बना रहता है, उसके 6 और 7 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल कुछ कम 33 सागर प्राप्त होने से तत्प्रमाण कहा है। नारकियों में तो 10, 9 और 8 ही हो गए, वो 7 वाला तो विसंयोजना वाले के होता है, तो इसको बाद में तो मिथ्या दृष्टि रखना है लंबे काल तक, तो इसलिए यहाँ कहते हैं 7 और 6 का जो उदीरक है वो कौन है, तो समय दृष्टि, उसको मिथ्या तो नहीं रखना और वापस अंत में जाके फिर समय दृष्टि बनाना। अब रहा 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक के उत्कृष्ट अंतरकाल का विचार, तो इनका उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूल से अधिक नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि ये जो जीव मिथ्यात्व में था 10, 9, 8 थे, समय दृष्टि हो जाएगा तो 9, 8, 7 में चला जाएगा, 6 भी कभी कभी होगा उपशमिक वाले को, परंतु उसका अंतर्मूल से अधिक अंतर नहीं हो सकता, क्योंकि जो मिथ्या दृष्टि या वेदक समय दृष्टि नारकी है उसके 8 और 9 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूल से अधिक नहीं प्राप्त होता, और जो उपशम समय दृष्टि है उसका उसके साथ रहने का काल ही अंतर्मूर्त है, इसलिए नारकियों में 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। मंजू ख्याल में आई बात, देखो किसकी बात चल रही है, पहले हमने 10 का अंतर देखा, 10 का अंतर देखने के लिए क्या, वो मात्र मिथ्या दृष्टि की होता है, अब उसको समय दृष्टि बनाओ और रखो अधिक से अधिक काल, तो लंबा काल तो सातवें नरक में प्राप्त होता है, और वो भी वहाँ तो मिथ्यात्व में जीव जन्मता है, समय दृष्टि होता है, अंत में फिर मिथ्यात्व में आता है। अंतर प्राप्त करने के लिए 2 बार 10 का करना चाहिए था, शुरू में 10 वाला था, समय दृष्टि हुआ तो 9, 8, 7 में भी जो कुछ होना था वो हो गया, वापस वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में भी 9, 8 होकर फिर 10 में आ गया, तो उसका अंतर समाप्त हो गया। ये तो 10 वाले स्थान के लिए, अब 9 और 8 वाले के स्थान के लिए अगर सोचना है तो 9 और 8 का स्थान मिथ्यात्व में भी है, सम्यक्त्व में भी है, अब वहाँ गुणस्थान 4 ही है, चारों ही गुणस्थानों में 9 और 8 का स्थान है, तो उसका अंतर कितना हो सकता है, तो अंतर मूल से अधिक नहीं हो सकता 9 और 8 के लिए। 6 का किसके होता है, औपशमिक समय दृष्टि के, व्यावसायिक के भी होता है, तो वहाँ पर उसका अंतर हमें जघन्य अंतर तो ठीक समझे हम, अंतर मूर्त है, उत्कृष्ट अंतर गठित करना है तो क्या करना है, तो शुरू में एक बार औपशमिक समय दृष्टि बना, फिर मिथ्या तो में ले जाओ तो 6 का स्थान नहीं रहेगा, वापस लास्ट में जाके औपशमिक समय दृष्टि बना दे, फिर 6 का स्थान हो जाएगा। इस तरह से जिसका अंतर देखना है उसके बीच में अन्य गुणस्थान में ले जाओ जहाँ वो स्थान नहीं होगा, ये 9, 8 के स्थान तो सभी चारों गुणस्थानों में कॉमन है, तो उसका अंतर अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि वो भय जुगुप्सा में तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में उसका उदय होता ही रहता है, ये बात यहाँ करें। यहाँ लिखा ना नीचे से 6 लाइन में, 6-7 में मेरे ख्याल से, इसलिए नारकियों में 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है, यह ओघ प्ररूपणा है जो सातवें नरक में अविकल बन जाती है। आप कहेंगे ये आदेश की बात चल रही है, ओघ क्यों कह रहे हैं, नरक की अपेक्षा ओघ, सामान्य नरक उसको ओघ का, ओघ यानी सामान्य, और नारकियों में अगर विभाजन करेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा नरक तो उसको कहेंगे वो आदेश, तो यही जो सामान्य से जो नारकियों की प्ररूपणा है वो सातवें नरक में अविकल होती है, क्योंकि वो हमने सभी सामान्य की अपेक्षा 33 सागर में कुछ कम बताया था, वो बात सातवें में घटित होती है, इसलिए इस प्ररूपणा को तो सातवें नरक में इसी प्रकार जानना चाहिए, मात्र अन्य नरकों में जघन्य अंतर तो ओह प्ररूपणा के समान प्राप्त होने में कोई बाधा नहीं। जहाँ एक अंतर्मूर्त कहा वहाँ तो सभी नरकों में अंतर्मूर्त ही होगा, परंतु उत्कृष्ट अंतर जो हमने कुछ कम 33 सागर कहा था वो सभी नरकों में अपने अपने स्थिति से कुछ कम होगा। तो कहते हाँ 10, 7 और 6 प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर ओह के समान नहीं बनता, सो उसका कारण केवल उस नरक की भवस्थिति है जिसकी सूचना मूल में की ही है। अन्य नरकों में देखना है तो अपनी जो वहाँ की जो स्थिति है उस नारकी की बड़ी आयु उसमें कुछ कम समझना।
ये 10 का अंतर के लिए उन्होंने सम्यक दृष्टि चौथे में भेज दिया तो इसे नहीं हो सकता है मिथ्या दृष्टि को अंतर्भूत तक वही का वो अंतर्भूत तक जुगुप्सा का और लंबे काल तक ऐसे कहाँ पे अंतर्भूत में ओवरलैपिंग हो ही जाएगा।
अंतर्मूर्त में वापस आएगा ही
नहीं, अंतर्लेपिंग हो ही जाएगा, दोनों का साथ में उदय हो ही जाएगा।
हाँ, क्योंकि वहाँ लंबे काल तक तो अन्य दो में रख ही नहीं सकते। 10 वाले को
नहीं, 9 वाला हो गया और ये 9 वाला लंबे काल तक चला
नहीं चलता है, अंतर्मूर्त के ही ले रहेगा, लंबे काल तो तक चलता ही नहीं। उसका काल तो एक समय हो सकता है जो ओवरलैपिंग हो नहीं हो उसकी अपेक्षा कहीं पर घटित हो सकता है, परंतु ये अंतर तो अंतर्मूल से नहीं घटित होगा, वापस उदय होगा ही होगा। अब ये हमने नारकियों में देख लिया, अब तिर्यंचों में देख। तिर्यंचों में 10 प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 3 पल्य है। यहाँ हमने कितना देखा था, कुछ कम 33 सागर। अब तिर्यंचों में एक लंबा बहु लेना है, एक ही बहु लेना है, तो उसमें मिथ्यात्व में जन्मा तो 10 का स्थान था, सम्यक तो प्राप्त किया, वापस उसमें मिथ्यात्व में लाना है उसी बहु में, क्योंकि अभी तिर्यंच से देह होगा वो नहीं चलेगा, भोग भूमि में है तो अंत में फिर मिथ्यात्व में लाना है और 10 प्रकृति का स्थान करना है। तो पहले वाले अंतर्मूर्त या पहले वाला यथायुग काल, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो गर्भ का काल भी भूमि में लेना पड़ेगा, तो पहले कुछ काल और बाद में लास्ट में एक अंतर्मूर्त, तो एक कुछ कम 3 पल्य हो जाएगा। नौ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है। अब ये जो बीच वाले हैं ना, 10, 9, 8 की बात है, 9 वाले का जो है वो एक समय के लिए वो ओवरलैप वाला होगा, 10 का हो जाएगा या अंतर पड़ेगा बीच में भय और जुगुप्सा में, तो दोनों ही नहीं है तो एक समय का घटित हो सकता है, तो जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 1 पूर्व कोटि है। नौ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अंतर, हाँ, तो क्या कैसे कराना है लक्ष्मी ताई? नौ प्रकृतियों का देखो, नारकियों में कितना देखा नौ का उत्कृष्ट अंतर, जरा देख लो। नौ का देखो, फिर से देख लो आदेश में क्या लिखा है,
9 का उत्तर,
10 का और 6 का ही खाली लंबा हो सकता है,
बाकी का अंतर्मूर्त,
बाकी का अंतर्मूर्त है। अब तिर्यंचों में ऐसी क्या बातें बनेगी, प्रतिभा आपको बताना है कि उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ अलग होगा। कितना बताया उन्होंने, कुछ कम 1 पूर्व कोटि बता दिया कि नारकियों से इसमें क्या विशेषता है, इसमें पूर्व कोटि का अंतर बन सकता है 9 वाले स्थान का मंजूर, बहुत अच्छा, 5वां गुण स्थान प्राप्त कराना, चौथे तक 9 का उदय है, 5वें वाले को नहीं है, उसमें 8, 7, 6, 5, 4 पॉसिबिलिटी होती है, तो उसको 5वें में रखना। देखो हम यहाँ देखते, उसके लिए हमने क्या देखा था, सम्मूर्छन तिर्यंच में उत्पन्न करा, सारे मिथ्या दृष्टि है, अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त करेगा, 5वें वाला हो जाएगा तो 9 का अंतर हो गया, और फिर लास्ट में फिर दोबारा उसको नीचे के गुण स्थानों में लाना है तब नव का उदय कराना है इसको। तो देखो उसका उत्कृष्ट अंतर कुछ कम एक पूर्व कोटि, एक क्यों लिखा है ये हमें समझ में आना चाहिए। उत्तर तो हमें यहाँ प्राप्त है, परंतु वह ऐसा क्यों कहते हैं। अब आठ प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, क्योंकि पांचवे में भी गया तो वहाँ आठ सात छः और पाँच चार स्थान है। वहाँ पर पांचवा वाला तो औपशमिक वाले के होगा या साइक नहीं लेना है, और वो तो उसमें भी उसका अंतर्घटित हो सकता है परंतु वो भी अंतर्मूर्त होगा, परंतु वहाँ लगातार पूर्व कोटि तक रहता है तो आठ वाले का अंतर अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त होगा। ये आठ का जो स्थान है वो कहाँ कहाँ होगा, पांचों ही गुण स्थानों में होगा। पहले में दस नौ आठ के स्थान है, सात का विसर्जन वाले के होगा, दूसरे में नौ आठ सात है, तीसरे में नौ आठ सात है, चौथे में नौ आठ सात छह का हो सकता है औपशमिक छाइक वाले के, पांचवे वाले का आठ सात छह और पांच हो सकता। तो ये आठ वाला जो है वो सर्वत्र है, तो उसका उत्कृष्ट अंतर कितना होगा, तो अंतर्मूर्त होगा। किसी गुणस्थान में वो नहीं पाया जाता तो उस गुणस्थान में भेज के हम बड़ा अंतर पा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये नौ प्रकृतियों के उदीरक के लिए उसके चौथे से ऊपर भेजा, चौथे तक तो नौ वाला स्थान भी था और पांचवे वाले को नौ वाला स्थान नहीं है, तो पांचवे गुणस्थान में लंबे काल तक रखने से ये नौ का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त होगा। परंतु आठ वाला स्थान तो सभी पांचों गुणस्थानों में है, तो उसका अंतर कैसे, वो भय जुगुप्सा के उदय बदलने से होगा। वो अंतर कितना है, तो उत्कृष्ट भी एक अंतर्मूर्त है। जघन्य एक समय होगा क्योंकि आठ से सात या नौ हो जाएगा तो हो सकता है। सात और छह प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है। अभी सात छह भी बीच वाले ले सकते हैं, छह में से पांच, पांच में से छह हो सकता है, पांच प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। यहाँ एक समय नहीं घटित होता, यहाँ अंतर्मूर्त होगा क्योंकि पांच वाला किसके होगा, पांचवा औपशमिक वाला है, उसके छह वाला होके पांचवे में आने के लिए उसको अंतर्मूर्त लगेगा।
तो शाइक वाला भी ले सकते नहीं यार,
शाइक नहीं होता तीन में,
चौथा वाला,
चौथा वाला शाइक, चौथा वाला पांचवा नहीं। और सबका उत्कृष्ट अंतर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, तिर्यंश में ये बात घटित हो सकती है, अन्यत्र नहीं होती। क्योंकि नारकियों में अगर देखना है तो एक ही भव में लेना है, या मिथ्यात्व अवस्था में लगातार तिर्यंश ही तिर्यंश रहे, ये तो हो सकता है। अंतिम मनुष्य भव के पहले वाला उसका तिर्यंश में से मनुष्य में ले जाओ, वहां तक वो लगातार तिर्यंश रह सकता है, और लास्ट में जाके उसको मनुष्य भोग कराना छोटा वाला, तो ये उपार्ध पुद्गल परिवर्तन हो जाएगा। विशेषण, तिर्यंचों में सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्ल्य प्राप्त होने से इनमें दस प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण कहा, यानी उसको लंबे काल तक सम्यक दृष्टि रखना है लगातार और वापस मिथ्यात्व में लाना है, ये मुख्य बात है। इसलिए तीन पल्ले के अंत में जाके फिर उसको मिथ्यात्व में लाना है। इनमें संयमासंयम का उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि होने से नौ प्रकृति की करना, नौ प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर काल उक्त काल प्रमाण कहा है, क्योंकि संयमासंयम जीव के नौ प्रकृतियों की उदीर्णा संभव नहीं है, यानी वो नहीं पाई जाती उसमें। किंतु तिर्यंचों में आठ प्रकृतियों की प्रकृति रियो है, प्रकृति वो रफार नहीं चाहिए, बिंदी चाहिए। तिर्यंचों में आठ प्रकृतियों की उदीर्णा का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त से अधिक नहीं बन सकता, यह स्पष्ट ही है। कारण हमने देखा ना, पांचों गुण स्थानों में उसका उदय, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त कहा है। यह संभव है कि कोई तिर्यंश उपार्थ पुद्गल परिवर्तन काल के प्रारंभ में और अंत में 7, 6 और 5 प्रकृतियों की उदीरणा करे और मध्य काल में मिथ्या दृष्टि बना रहकर इनका अनुदीरक रहे, यह भी संभव है। इसलिए इन 3 स्थानों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है। यहाँ पर 10 आदि अन्य सब स्थानों के उदीरक का जो जघन्य अंतर बतलाया है वह ओघ के समान होने से उसका ओघ प्ररूपणा में खुलासा कर ही आए हैं। 10 का कितना होगा तो हमने देखा था ना, मिथ्या तो में से उसको ऊपर भेज देना, सम्यक दृष्टि रखना।
दस का तो 9 एक समय भी हो जाएगा ना,
उत्कृष्ट जघन्य अंतर। अच्छा हाँ। जघन्य अंतर जो है
एक समय होगा ना,
एक समय होगा कि अंतर्मूर्त होगा? 10 वाला तो अंतर्मूर्त बतलाया था क्योंकि वो जो एक्सिम साइड वाले हैं ना वो अंतर्मूर्त वाले होते हैं। 6 वाला है या 10 वाला है,
बाकी बीच वाला,
बीच वालों में एक समय घटित होते हैं। ये तो ओके समान है इसका, इसलिए इसे वहां से जान लेना चाहिए। मात्र तिर्यंचों में 5 प्रकृतियों का उदीरक ऐसा उपशम समय दृष्टि संयमासंयम गुणस्थान वाला जीव ही हो सकता है जो भय और जुगुप्सा की उदीरणा नहीं कर रहा है। चूंकि जीव को भय या जुगुप्सा का उदीरक होकर तदनंतर पुनः 5 प्रकृतियों के उदीरक होने के लिए कम से कम अंतर्मूर्त काल लगता है, बात हमने देखी ना अभी, यही कारण है यहाँ पर 5 प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त कहा है। ये बात ख्याल में आई? देखो यहाँ पर 5 वाले के जघन्य अंतर अंतर्मूर्त का, परंतु ऊपर के गुणस्थानों में जो हमने पहले देखा यहाँ उसकी बात, यहाँ तिर्यंश की बात नहीं कर रहे हैं, जो औक्षमिक समय दृष्टि 6, 7 वाला है उसको 4 वाला भी स्थान होता है, 4 वाला भी होगा, 5 वाला भी होगा, 6 वाला भी होगा, उसके 5 का अंतर एक समय घटित होगा वहां पर। अभी ये तो इसका एक्सट्रीम है 5 वाला, इसको उदय होकर वापस बिना उदय होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगेगा। ऐसा सोचे ना, दोनों तरफ के जो 10 वाला है या यहाँ पर
एक्सट्रीम वाला नहीं होगा,
एक्सट्रीम वाला
अंतर्मूर्त
नारकी के लिए 6 वाले के लिए कहा, तिरंची के लिए 5 वाले के कहा। अब ये सामान्य तिर्यंचों की बात देखिए, अभी पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में देखो, वहां तो हमने वो जो उपार्ध पुद्गल परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ उसकी अपनी जो स्थिति है उसको बताना पड़ेगा। तो पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक का भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है। सात और 6 प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक 3 पल्ले है। देखो ये 7 और 6 का कैसा लेना, क्योंकि ये समय दृष्टि बनाना पहले भाव में लगातार पूर्व कोटि पृथक्त्व उसको मिथ्यात्व में रखना और लास्ट में जाके फिर 3 पल्ले के अंत में समय दृष्टि बनाना, तो उसका अंतर हो जाएगा क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में 7 और 6 का स्थान किसके होगा, मिथ्या दृष्टि के, तो 10, 9, 8 होगा।
समय
दृष्टि के वो 9, 8, 7 वाले,
7 वाला होगा और 5वें गुणस्थान वाले को 6 वाला।
हाँ, परंतु अभी हमको 3 पल्ले वाला लेना है या
उपशम का काल लेना
है, तो उसका ये 6 वाला नहीं है, 7 और 6 वाला लिए उपशम समय दृष्टि बनाने
लास्ट।
5 प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है, जैसे हमने अभी सामान्य तिर्यंच में देखा वैसे पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में देखा। विशेषार्थ, पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की उत्कृष्ट काय स्थिति यानी लगातार पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में रहने का काल पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक अशिक हुआ अधिक 3 पल्ले बतलाई है। इसलिए यहाँ पर सात और छह प्रकृतियों के उदीरक का उत्कृष्ट अंतर उक्त काल प्रमाण बन जाने से वह तत्प्रमाण कहा है। ये ख्याल में है ना, उत्कृष्ट काय स्थिति है तो शुरू में एक बार सम्यक को प्राप्त किया, फिर अंतर किया, मिथ्या दृष्टि रहा लगातार, और लास्ट वो तीन पल्ले के अंत में जाके उसने सम्यक को प्राप्त किया। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के लगातार इतने बहुत होते हैं, सम्यक दृष्टि होगा तो देव में चला जाएगा। तथा उक्त तीन प्रकार के तिर्यंचों में अपनी अपनी पर्याय के रहते हुए पांच प्रकृतियों के उदीरक का अंतर उपशम सम्यक्त्व सहित संयमा संयम के काल को ध्यान में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। यानी उनकी अपनी अपनी एक ही भाव लेना पड़ेगा उसका, और उक्त तीनों प्रकार के तिर्यंचों में से किसी एक तिर्यंच की काय स्थिति के भीतर दो बार उपशम सम्यक्त्व का प्राप्त होना संभव नहीं है। ये तीन पल्ले में तो संभव है, एक बार वाला एक चौक काय भव स्थिति है उसकी, उसमें तो नहीं
का संग नहीं होगा ना,
काय स्थिति के भीतर भी नहीं है। काय स्थिति कितनी है? पूर्व कोटि की तक, तो उसमें दो बार संभव नहीं कहते हैं। इसलिए यहाँ पर उक्त तिर्यंचों में पांच प्रकृतियों के उदीरक का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त कहा है, शेष कथन सुगम है। ये बात यहाँ नहीं जमती है। तीनों प्रकार के तिर्यंचों में किसी एक तिर्यंच की काय स्थिति के भीतर, ये जो लिखा है ना, काय स्थिति में तीन पल्ले को भी लिया है, और तीन पल्ले पांचवे की बात, पांचवे की बात मैंने घोटाला कर दिया। पांच प्रकृतियों की, यानी पांचवा गुणस्थान संयमा संयम की बात है ना। मैंने दो बार उपशम समझते हैं, पूर्व कोटि के ही भाव लेना है, वहां ये बात संभव नहीं है। अब यही रुकते हैं ध्यान। जावानी के ज्ञान से
चूले दो कालो, सोवानी मस्तक नहु सदा देखहु।
नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सप्तसावनम। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रणम, नमो लोहे सप्तसावनम। नमो ओरियंतानम।